रफ़ा हाजत के मसाइल, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 30 है, मसला नंबर 18 को ही दोबारा दोहरा लेते हैं। रास्ते और साए की जगह में रफ़ा हाजत करना मना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो, लानत के दो कामों से बचो। सहाबे कराम रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, लानत के वो दो काम कौन से हैं? आपने फरमाया, लोगों की गुजरगाह और सायादार जगह पर रफ़ाए हाजत करना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो इस हदीस से इस्लाम का मिजाज समझ में आता है। और एक और हदीस जिसका खुलासा है कि ला दररा वला दरार, ना तुम किसी को तकलीफ दो और ना कोई तुमको तकलीफ दे, ये असूल बहुत अच्छी तरह समझ आता है। और इस्लाम का जो मफहूम है वो यही है कि इंसान किसी के लिए दुख और तकलीफ का सबब ना बने। तो लिहाजा खुद कोई ऐसा काम करना या अपने जानवरों को जो पेट्स होते हैं उनके जरिए करवाना, बच्चों को रास्तों में फारिग करवा देना। अब रास्ते से मुराद सिर्फ बाहर सड़क का रास्ता नहीं है, बाज दफा कुछ ऐसे कम्युनिटीज हॉल्स हो सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए। और अब यहाँ तो हम कर नहीं सकते ना, लेकिन अमूमन जहाँ मौका मिल जाए तो बाहर दीवार के साथ या किसी पार्किंग लॉट में किसी ऐसी जगह पे कोई भी गंदगी फैलाना, हत्ता कि इंसान अपनी को बची खुची चीजें फेंक दे, कूड़ा फेंकना, ये सारी चीजें कम अज कम एक मुसलमान का मिजाज तो नहीं होती। और आप देखिए कि आप जब जमा, इसका एक बहुत आसान सा तरीका ये कि आप अपने पास एक छोटा सा बैग रखा करें। मैं जब भी कभी ट्रेवल करती हूँ बाय रोड, तो मैंने गाड़ी में भी एक छोटी सी डस्टबिन बनाई होती है, यानी एक छोटा सा लिफाफा है, उसको कोई एक मुनासिब जगह हैंडल है या उसके साथ लटका दें। कोई भी चीज रास्ते में, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, पेपर्स आपके एक्स्ट्रा हैं, वो कुछ खा रहे हैं, कोई चीज है जो बचे वो उसमें डाल दें। फिर जहां कहीं भी गाड़ी के लिए मतलब स्टॉप आप लेते हैं तो वहां उसको पकड़ के ट्रैश बिन में फेंक दें। हमारे यहाँ एक मिजाज है, शीशा खोला बाहर फेंक दो, पहले इधर उधर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन आप देखिए कि क्या इंसान की अपनी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। बस इस जुमले को सोचेंगे ना तो फिर आप हर वो काम करेंगे जिससे आप अपनी नजरों में इंशाल्लाह ताला बुलंद होंगे। अगला मसला है, देखते हैं, इस्तंजा करने के लिए मिट्टी के कम से कम 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर और हड्डी से इस्तंजा करना मना है। इस्तंजा कहते हैं रेस्ट रूम यूज करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को धोना या साफ करना, ठीक है। और इसमें भी लफ्ज देखें तो इस्तंजा में नून जीम वाव है, नजात पाना, जैसे नजौता का लफ्ज है ना, यानी अपने आप को पाक करना या उस चीज से फराकत हासिल करना जो इंसान को जरर दे रही थी। तो 3 ढेले या पानी इस्तेमाल करना, इसकी दलील क्या है? हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कजाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो मैं और मेरी उम्र का एक दूसरा लड़का पानी का लोटा और बर्छी उठाकर आपके साथ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के बाद पानी से तहारत करते। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इस हदीस से 2-3 बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो यह है कि उस दौर में इस तरह की सहूलत नहीं थी कि लोग घरों में ही इन चीजों से फारिग हो जाएं। और इसी से आप देखिए कि एक लाइफस्टाइल भी समझ में आता है। बिलफर्ज आप जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आज के दौर में भी घरों में रेस्टरूम ना होते और आपको कहीं बाहर जाना हो, तो क्या किसी के लिए मुमकिन है कि जितनी दफा अब हम रेस्ट रूम में जाते हैं उतनी दफा जाएं? आप सोचें, एक ऐसे औसत दर्जे पे मैं एक दिन में कितनी दफा रेस्ट रूम यूज करती हूँ, यानी ऑफ कोर्स वजू या दूसरे काम अलग हैं, सिर्फ अपने आप को फारग करने के लिए। अब एक बंदा जिसको ये पता हो कि मुझे हर बार घर से बाहर जाना होगा, और उस वक्त में नबी सल्लम के दौर में औरतों का अमल क्या होता था कि जब रात का अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल शाम का मलगजा या बिल्कुल सुबह उस वक्त जाती थी पर्दे के ख्याल से, और कुछ एक किस्म की बांट थी, मर्द उस वक्त जाए तो औरतें उस वक्त जाए, और अमूमन फिर औरतें अकेली नहीं जाती थी, एक दो खवातीन मिलके जाती थी। तो आप देखिए कि इससे खुद ब खुद फिर खाने पीने पर काबू आ जाएगा ना। हमारे पास चूंकि खाना बेहिसाब होता है तो हम उसको खाते रहते हैं, फिर उसके साथ दूसरा भी इस्तेमाल होता है, तो एक चीज दूसरी चीज का रास्ता खोलती है। आज भी आप देखिए कि दुनिया के कुछ ऐसे मुल्क हैं, मुझे किसी ने बताया और मैंने एक जगह खुद भी जाके देखा कि वो घरों के अंदर कमरों के साथ रेस्ट रूम या टॉयलेट बनाना इसको ना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो तसव्वुर वही बात कि ये गंदगी का है, हालांकि आजकल साफ भी होते हैं, लेकिन एक तहारत का एक जहन जब होता है तो वो इस तरह से कि रेस्टरूम के बिल्कुल अंदर ये होगी चीज, फिर घर के बिल्कुल बाहर बनाते हैं। एक जगह मैं गई तो वहां घर ही दो दो तीन तीन सौ साल पुराने हैं, इवन बाज बिल्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ है गो के इस वक्त वो इतने रेनोवेटेड हैं कि बिल्कुल अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके अंदर का सेटअप मुझे बहुत ही उसमें दो तीन चीजें अपील की। एक तो ये था कि रेस्टरूम बिल्कुल घर के पीछे, यानी जैसे पूरे कमरे यहाँ यहाँ है ना, तो बीच में आप समझे बैकयार्ड है, ये अलग बात है अब उसको उन्होंने कवर करके तो एक हॉल टाइप कर लिया, लेकिन बिल्कुल पीछे है। और बस उन्होंने मुझे बताया जो मेरी होस्ट थी कि ऐसे भी घर है यहाँ कि घर के अंदर से रेस्टरूम में जाने का कोई तसव्वुर नहीं है, बाहर से अलग जाना पड़ता है, घर का हिस्सा लेकिन बाहर से दूर जाना पड़ता है, मिलाना पसंद नहीं करते। फिर दूसरी चीज उसमें मुझे उन्होंने बताई कि पूरे घर में सिर्फ एक टेलीफोन की लाइन है, स्विच है, और मोस्टली वो किचन के साथ है। फिर इलेक्ट्रिक का जो मेन, जैसे जहां हम अपनी ये लगाते हैं इलेक्ट्रिक का प्लग, वो भी सम ऑफ प्लेसेस पे बस एक है, हालांकि बहुत इस वक्त भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो वो क्यों ऐसा है? क्योंकि घर इतने पुराने हैं। अब उन्होंने उससे कोशिशें कर करके उसके रेनोवेशन की, इस वक्त भी वहां जाके जब मैंने इंटरनेट यूज करना चाहा तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हुई। क्यों? कि उसकी जो बिल्डिंग और दीवारें हैं वो कंक्रीट के और बहुत हैवी मटेरियल से बनी हुई है। तो वक्त के साथ साथ आप देखिए कि ये सब हो रहा है, और मुझे ये बात कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये तो एक सहूलत है, अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या फिर अटैच बात नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, अगर आप एक घर में चंद मुख्तलिफ लोग हैं, फैमिलीज हैं, तो प्राइवेसी का मामला है, शर्त ये कि आप उसको साफ रखें फर्स्ट थिंग, सबसे पहली। दूसरी बात, उसका डोर लॉक करें, बंद रखा करें। बाद लोग ना समझी से डोर खुला छोड़ देते हैं, ये कभी भी ना करें। ठीक है, फिर एक और चीज, यानी इसमें जो मैंने देखी और मुझे किसी ने ईमेल भेजी कि ये एक सोच के एक तस्वुर गंदा आता है ना, लेकिन एक ऐसा रेस्टोरेंट बना है दुनिया के बहुत ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि पॉपुलर कंट्री में, कि पूरा जब आप रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं ना तो वो एक किस्म का टॉयलेट, उसकी डिजाइनिंग टॉयलेट की है, जो कुर्सियां जिस पे, मतलब है नहीं टॉयलेट वो ऑफ कोर्स, लेकिन जिन कुर्सियों पे बैठते हैं लोग खाना खाने के लिए, वो बिल्कुल टॉयलेट की सीट्स हैं, और जो पानी डालने की चीजें, लोटे, यानी बिल्कुल आप देखेंगे एक बहुत बड़े टॉयलेट में जहां सब लोग, और रियली इतना बैड फीलिंग आई जब मैंने देखा कि सब लोग बैठे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में तो यही लगता है कि लोग अपनी जरूरत से फारिग हो रहे हैं। ये गंदे मिजाज की अलामत होती है कि बगैर सोचे समझे ऐसी चीजों को इंसान अपनाने लगे। फिर उसके बाद आप देखिए कि दूसरी चीज इस हदीस से जो पता चलती है कि एक बुजुर्ग या कोई मर्तबे में बड़ा शख्स है कोई भी, तो वो अपनी खिदमत के लिए साथ दूसरे को रख सकता है। अब इस हदीस से ये नहीं समझ आता कि अल्लाह के नबी ने उनको कहा था कि ये करो, लेकिन हजरत अनस रजी अल्लाह अनहो की ये अल्लाह ताला ने उनको ये अच्छी शान दी या खुशकिस्मती है कि ये नबी सल्लम के खिदमत गुजार थे। यानी कुछ लोग होते हैं जो दूसरे काम करते हैं, लेकिन ये आपके जाती कामों के लिए थे। और जब नबी सल्लम हिजरत करके मदीना में आए तो हर एक ने अपना दामन खोल दिया, किसी ने किसी भी तरह से जो भी भाईचारा हुआ, लेकिन उम्मे सुलेम नाम की एक औरत थी तो वो अपने इस बेटे को लेके आई, 10 साल के थे उस समय उम्र में, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा आपकी सोहबत में रहे, आप इसको अपना खादिम खास बनाए, इनका लकब है खादिम खास, तो ये आपके साथ रहते थे, और इनको अल्लाह के नबी ने इतनी दुआएं दी थी कि ये सबसे बाद में फौत होने वाले सहाबा में से हैं। जब फौत हुए तो 90+ इनकी एज थी, और इनकी इनकी नस्ल में तकरीबन 100 या 90 के बिटवीन हाफिज़े कुरान थे। तो जो बंदा साथ रहता है ना, वो दुआएं लेता है, एक बात है। फिर दूसरी बात है कि इससे इज्जत की बात भी है, पानी लेके गए इस्तेमाल के लिए, बर्छी क्यों लेके गए, सवाल पैदा होता है। इसके दो तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज है कि जमीन को थोड़ा सा उस वक्त में लोग नरम कर लेते थे, छींटों से बचने के लिए थोड़ी सी घड़ा सा खोद लिया, ताकि जब कोई इंसान फारिग हो तो उसके छींटे उसके अपने कपड़ों पे ना पड़े। फिर दूसरी वजह ये भी होती थी कि बर्छी से फिर इर्द इर्द गिर्द की मट्टी से उस जगह को कवर कर देते थे। और तीसरी ये भी हो सकता है कि दूर जंगल था या खुली जगह थी, तो कोई जानवर अगर वहां हो तो नुकसान ना दे। तो इससे बहरहाल ये चीज समझ में आती है कि, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बीच में पर्दा होता था। एक चौथा भी मकसद बर्छी का होता था, और वो क्या था कि बाज दफा चादरें साथ ले जाते थे, तो वक्ती तौर पे जैसे पर्दा लगाने के लिए वो बर्छी के साथ यानी सोचें कि बर्छी की जो नोक है उसके अंदर कपड़े को अटका के जमीन में डाल देते थे, तो गोया के पर्पस के लिए था, और उसमें कई उसे कई किस्म के फवायद लिए जाते थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اس کا اندر کہ آن لائن پہ بھی آواز آ رہی ہے، کیونکہ آن لائن اور آن سائٹ دو آنکھوں کی طرح ہے، ایک آنکھ سے بھی نہ دکھے تو صحیح طرح سے دکھا نہیں جاتا. تو چلیے ہم جلدی سے آج کا کرتے ہیں ترجمہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک پریزنٹیشن دیکھیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 27، آیت نمبر 217 سے 221 سورۃ البقرہ. لیسن نمبر 27، آیت نمبر 217 221 سورة البقرة. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے. عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں. قتال فی، لڑنا ان میں کیسا ہے. اب دیکھیے کہ یہ ترجمہ وہ کیا میں نے کہ جس سے آپ کو بات اچھی طرح واضح ہو جائے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کیا ہے. اب یہ صرف میں بولوں گی، آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو لفظ، اگر ایک لفظ آئے تو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو. تو یا سلونا کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. ان سے شہر مہینہ، یا شہر واحد ہے، یہ بتانا چاہ رہی تھی. مہینہ الحرامی، حرمت والا. قتال لڑنا، فی اس میں، ٹھیک ہے. اب میں اس طرح اگر بولتی تو آپ کو مفہوم سمجھ نہ آتا. تو سوال کیا تھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے. قل قتال، کہہ دیجئے لڑنا. فی ہی اس میں، کبیرن بڑا گناہ ہے. اب دیکھیے کہ بات صرف بڑا سے بھی سمجھ آ جاتی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا ہے بڑا. تو گناہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بات کو واضح کرنے کے لیے. اب کل آپ ترجمہ جب یاد کریں اور آپ کہیں کہ پارے میں تو کبیر ان کے نیچے بڑا گناہ لکھا ہے، اور کبیر کا معنی بڑا ہوتا ہے، تو بڑا ایسے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ انا حلق کبیرت الا للخاشعین، یہ بڑا بھاری ہے. وہاں کبیرہ کے لفظ میں بھاری تھا، بوجھل، ہارٹ کے معنوں میں. تو عربی زبان کا یہ حسن ہے کہ ایک لفظ کو کئی مختلف معنوں میں آتا ہے. تو کبیر بہت بڑا، فائل کے وزن پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبیر کے اندر یعنی سینس کے آ رہی ہے کہ بہت بڑا گناہ، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مفہوم ہے. وسدن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا. وکفر بہ، اور اس سے انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے. واخراج اہلہ، اور نکال دینا وہاں، سوری، واخراج اہلہ منہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو اس سے. اکبر عند اللہ، بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک. والفتنۃ، اور فتنہ. اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے. اور قتل سے مراد ایک فرد کا قتل نہیں، بلکہ خون ریزی، اجتماعی قتل کی طرف اشارہ. ولا یزالونا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ایک ترجمہ ہے نا جو آپ کے بارے میں بھی، اب ایک اور اس کا لکھیں اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں تو تفسیر میں دونوں کا تھوڑا فرق، بلکہ لفظی وضاحت میں بتا دوں گی. ولا یزالونا، اور نہیں وہ ٹلیں گے. ٹھیک ہے، دیکھنے میں فرق ہے لیکن بات ایک ہی ہے. جب کوئی نہیں ٹلتا تو ہمیشہ ہی آپ کے سر پہ سوار رہتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ٹل جاؤ جہاں سے. تو یہاں دونوں طرح سے مانی ہے اس کا. یقاتلونکم، لڑتے رہیں گے تم سے. حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو. عن دینکم، تمہارے دین سے. ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں. यर्तदित मिनकुम,
मिनकुम,
और जो कोई फिरेगा तुम में से,
और जो कोई फिरेगा तुम में से,
अन दीन ही,
अपने
अपने दीन से,
दीन से,
फयमुत, फिर वो मर जाए,
फिर वो मर जाए,
वहुवा काफिरुन, और
काफिरुन,
वो काफिर हो,
और वो काफिर हो,
फउलाई का हबितत आमालुहुम, तो यही लोग हैं कि बर्बाद हो गए आमाल उनके,
यही लोग हैं बर्बाद हो गए
फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखरत में,
दुनिया और आखरत
व
में,
उलाई का अस्हाबुन नार,
उलाई का अस्हाबुन नार,
और यही लोग हैं दोजख वाले, हुम
और यही लोग हैं दोजख वाले,
फीहा खालिदून,
हुम फीहा खालिदून,
और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं।
और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं।
इन्नल्लज़ीना आमनू,
इन्नल्लज़ीना आमनू,
बेशक जो लोग ईमान लाए,
बेशक जो लोग ईमान लाए,
वल्लज़ीना हाजरू,
वल्लज़ीना हाजरू,
और जो ईमान लाए, सॉरी, और जिन्होंने हिजरत की,
और जिन्होंने हिजरत की,
वजाहदू फी सबीलिल्लाही,
वजाहदू फी सबीलिल्लाही,
और जिहाद किया अल्लाह की राह में,
और जिहाद किया अल्लाह की राह में,
उलाइक यरजून रहमत अल्लाह, वही लोग हैं जो उम्मीद रखते अल्लाह की रहमत की,
वही लोग हैं जो उम्मीद रखते अल्लाह की रहमत की,
वल्लाहु गफूरुर रहीम,
वल्लाहु गफूरुर
और
रहीम,
अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है।
यसलूनका, वो
यसलूनका,
पूछते हैं आपसे,
वो पूछते हैं आपसे,
अनिल खम्री वल मैसिर,
अनिल खम्री वल मैसिर,
शराब और जुए के बारे में,
शराब और जुए के बारे में,
कुल फीहिमा इस्मुन कबीर,
कुल फीहिमा इस्मुन कबीर,
कह दीजिए इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा,
कह दीजिए इन दोनों में गुनाह है बहुत
व मनाफियु लिन्नास, और
मनाफियु
फायदे लोगों के लिए,
और फायदे लोगों के लिए,
व इस्महुमा अकबरु,
व इस्महुमा अकबरु,
और गुनाह इन दोनों का सबसे बड़ा है,
और गुनाह इन दोनों का सबसे बड़ा है,
मिन नफ़इहिमा,
मिन
इन दोनों के नफे से,
इन दोनों के नफे से,
व यसलूनका, और
वयसअलूनका,
वो पूछते हैं आपसे,
और वो पूछते हैं आपसे,
माजा युन्फिकून,
माजा युन्फिकून,
क्या कुछ खर्च करें,
क्या कुछ खर्च करें,
कुलिल अफ,
कुलिल अफ,
कह दीजिए जरूरत से जायद,
कह दीजिए जरूरत से जायद,
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु,
कज़ालिक
इसी तरह बयान करता है अल्लाह,
इसी तरह बयान करता है अल्लाह,
लकुमुल आयाती,
लकुमुल आयाती,
तुम्हारे लिए निशानियां,
तुम्हारे लिए निशानियां,
लअल्लकुम ततफक्करून,
लअल्लकुम ततफक्करून,
फिर दुनिया वल, सॉरी, ताकि तुम गौर करो,
ताकि तुम गौर करो,
फिर दुनिया वल आखिरती,
फिर दुनिया वल आखिरती,
दुनिया और आखरत में,
दुनिया और आखरत में,
वयसलूनका,
वयसअलूनका,
और वो सवाल करते हैं आपसे,
और वो सवाल करते हैं आपसे,
अनिल यतामा,
अनिल यतामा,
यतीमों के बारे में,
यतीमों के बारे में,
कुल इस्लाहुल्लहुम खैर,
कुल इस्लाहुल्लहुम खैर,
कह दीजिए इस्लाह उनके लिए अच्छा काम है,
कह दीजिए इस्लाम उनके लिए अच्छा काम है,
वइन तुखालिदूहुम,
वइन तुखालिदूहुम,
और अगर मिला लो तुम इनको,
और अगर मिला लो तुम इनको,
फइख्वानुकुम,
फइख्वानुकुम,
बस भाई हैं तुम्हारे,
बस भाई हैं तुम्हारे,
वल्लाहु यालमुल मुफसिदा,
वल्लाहु यालमुल
और
मुफसिदा,
अल्लाह खूब जानता है खराबी करने वाले को,
अल्लाह खूब जानता है खराबी करने वाले को,
मिनल मुस्लिह,
मिनल मुस्लिह,
इस्लाह करने वाले से,
इस्लाह करने वाले से,
वलो शा अल्लाहु,
वलो शा अल्लाहु,
और अगर चाहता अल्लाह,
और अगर चाहता अल्लाह,
लअनतकुम,
लअनतकुम,
अलबत्ता तकलीफ में डालता तुमको,
अलबत्ता तकलीफ में डालता तुमको।
इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम,
इन्नल्लाहा अजीजुन हकीम।
बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है।
बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है।
वला तनकहुल मुशरिकाती,
वला तनकहुल मुशरिकाती।
और ना निकाह करो मुशरिक औरतों से,
और ना निकाह करो मुशरिक औरतों से।
हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान लाएं।
यहाँ तक कि वो ईमान लाए।
वला अमतु,
वला अमतु।
और अलबत्ता लौंडी,
और अलबत्ता लौंडी।
मुमिनतुन,
मुमिनतुन।
ईमान वाली,
ईमान वाली।
खैरुन,
खैरुन।
बेहतर है।
बेहतर है।
मिम मुशरिका,
मिम मुशरिका।
मुशरिका से,
मुशरिका से।
वलौ आजबतकुम,
वलौ आजबतकुम।
अगरचे वो भली लगे तुमको। वला तुनकिहु,
वला तुनकिहु।
और ना निकाह करवाओ।
और ना निकाह करवाओ।
अल मुशरिकीना,
अल मुशरिकीना।
मुशरिक मर्दों से,
मुशरिक मर्दों से।
किसका? अपनी ईमान वाली औरतों का। हत्ता युमिनु,
हत्ता युमिनु।
यहाँ तक के वो ईमान ले आए।
यहाँ तक के वो ईमान ले आए।
वला अब्दुम मुमिनुन,
वला अब्दुम मुमिनुन।
और अलबत्ता गुलाम मोमिन, खैरुन, बेहतर है। मिम मुशरिकिन, मुशरिक से। वलौ आजबकुम, और अगरचे अच्छा लगे तुमको। वजह क्या है इस हुक्म की? कि उलाई का यदूना, ये लोग दावत देते हैं।
ये लोग दावत देते हैं।
इलन नार,
इलन नार।
आग की तरफ,
आग की तरफ।
वल्लाहु यदउ,
वल्लाहु यदउ।
और अल्लाह बुलाता है,
और अल्लाह बुलाता है।
इलल जन्नती,
इलल जन्नती।
जन्नत की तरफ,
जन्नत की तरफ।
वल मग़फिरह,
वल मग़फिरह।
और बख्शिश की,
और बख्शिश की।
बिइज़्निही,
बिइज़्निही।
साथ अपने हुक्म के,
साथ अपने हुक्म के।
वयुबैयिनु,
वयुबैयिनु।
और वो बयान करता है,
और वो बयान करता है।
आयाती ही,
आयाती ही।
अपने अपनी हुक्मों को,
अपने हुक्मों को।
लिन्नासी,
लिन्नासी।
लोगों के लिए,
लोगों के लिए।
लअल्लहुम,
लअल्लहुम।
ताके वो,
ताके वो।
यतज़क्करून,
यतज़क्करून।
वो नसीहत पकड़े,
वो नसीहत पकड़े।
बस जी, चलिए थोड़ी सी अल्फाज अल्फाज की वजाहत देखते हैं। थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो बातें हो गई हैं उसको ना दोहराएं। बाज़ दफ़ा की भी बातों को भी दोहरा देती हूँ मैं इस सोच के साथ कि तकरार। और कुरान का तो अंदाज ही है कि वलक सर्रफ ना, हमने खोल खोल के बयान किया दोहरा दोहरा के। तो बार बार जब आपके कान एक बात को सुनते हैं तो उसको याद रखते हैं। इसलिए जब भी कभी वो बात आए जो पहले से आपने सुनी हुई है तो उसको भी गौर से सुने। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके जहन में इस तरह से तहें लगती जाएंगी कि एक वक्त आएगा ये सारी बातें आपको ऐसी समझ आएंगी जैसे कि हमें अपनी जुबान समझ आती है। चलिए, यसलूना का में बात तो वही है, अनिशहरिल हराम, हुरमत के महीने में। फिर उसके बाद देखिए, हुरमत वाले महीने वही हैं चार, रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम। ठीक है, फी ही में, इसमें। अब यहाँ छोटा सा एक नुक्ता देखिए, अनिशहरिल हराम, हम अपनी रवा रवी में, जिसको कहते हैं ना कि बगैर सोचे चूंकि हमें लग रहा होता है कि हुरमत के महीने एक से ज्यादा है चार, तो हम इसका तर्जमा क्या कर सकते हैं? वो आपसे हुरमत के महीनों में लड़ाई करने का हुक्म पूछते हैं, ऐसे ही आता है ना। लेकिन अगर आप अभी ग्रामर को बगैर टच किए देखें तो शहर का लफ्ज भी यहाँ वाहिद है और फी ही में ही जमीर भी वाहिद की होती है। ठीक है, तो इन दोनों से लग रहा है कि यहाँ खास किसी वाक्य की तरफ इशारा है। ठीक है, तो शहरिल हराम की तालिन फी से ये ना आप कह दीजिएगा कि हुरमत के महीनों में लड़ाई करने को वो पूछते हैं, बल्कि लग रहा है कि किसी एक हुरमत के महीने में कोई मौका बना था तो उस पर ये सवाल है। ये एक साइड की बात है, कोई इतनी अहम नहीं, लेकिन आप इससे अरबी जुबान की वसत देख लीजिए। पुल किताल उन फी ही कबीर, कह दीजिए कि किताल इसमें बहुत बड़ा है। अब हम देखिए कि लफ्ज कहीं आ जाता है कतल, ठीक है, कहीं आ जाता है यकतुलून, कहीं आ जाता है फकतुलू। हाँ, अब यहाँ लफ्ज क्या, किताल, तो किताल का जो वजन होता है ना, मोस्टली ये मस्दर का होता है। मस्दर क्या है, आप उर्दू में ये लफ्ज बोलते हैं, मंबा मस्दर। मस्दर क्या है, मस्दर का रूट क्या होगा? स्वाद ताल रॉ। सदर कहते हैं सीने को। अब सीना हमारे जिस्म के अंदर एक सेंट्रल पोजीशन है ना, तो दिल के अंदर से हर रग निकलती है या हर चीज ब्लड उधर जाता है। तो मसदर अरबी जुबान में वो चीज होती है जिसमें से सारे लफ्ज फूटते हैं। एक चीज आपने पढ़ी थी रूट, रूट वर्ड क्या है, हर लफ्ज के अंदर होगा। जैसे आप देखिए किताल, यक्तलून, कातिल, मक्तल, मुकातल, ठीक है, ये फॉर्म्स है। लेकिन सिर्फ आप इनको टच करके देखें तो लफ्ज सिर्फ कितालुन यहाँ जो आया है ये, और यहाँ ये लफ्ज आ जाना इसकी जगह यक्तलून कातिलून, तो हर एक साउंड से ही आप सीखते जाएंगे फर्क होगा। इनशाला 5 पारों के बाद आपकी वो बुक शुरू करवा देंगे जिससे आपको तर्जमा याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ उसमें आपने अपनी मेमोरी को लाना है। अगर आप इजाजत दे तो अभी शुरू कर देते हैं, करते आधा घंटा बढ़ा लें क्लास का, ठीक है, तो उसको साथ शुरू करते हैं। लेकिन आपको भी नहीं उलझाना, इंशाल्लाह सूरह बकरा के बाद, नहीं तो 5वें पारे में रोज का एक छोटा सा सूल सिखाएंगे। आप देखिएगा कि आप वो जिसको कहते हैं ना इशारों की जुबान से ग्रामर पढ़े बगैर सीख लेंगे तर्जमा याद करना। अभी सिर्फ ये लफ्ज टकराने दे, फी ही इसमें कबीर बड़ा है। अब यहाँ फिर वही बात, कबीर बड़ा गुना है, कबीर फाइल का वजन है, अकबर एक लफ्ज होता है सबसे बड़ा, अकबर अफजल अफअल अशरफ अमजद, तो यहाँ कबीर फाइल का वजन है, जैसे जमील शकील और रहीम का वजन है। वह सद्दा लफ्ज देखिएगा, सद्दा क्या रूट है इसका, सब बोले स्वाद दाल दाल। सद्दा का लफ्ज रोकने के माने में, असल में सद किसको कहते हैं, सीन से होता है ना, तो दीवार होती है। सूरत कहफ में आप पढ़ते हैं हर जुमे को, तो सद्दा स्वाद से है, रोकना ये भी मस्दर है, सद्दा या सुद्दु सद्दन रोकना या आड़े आना, अनसबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, वो कुफरों बिही कुफर करना इसके साथ, ही की जमीर किधर है, अल्लाह की तरफ, वल मस्जिदिल हराम मस्जिद हुरमत वाली, इखराज अहली ही उसके घर वालों का निकालना। अब देखिए लफ्ज है ना इखराज, आज सारे लफ्ज इस किस्म के आ रहे हैं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। एक लफ्ज होता है अखराजा, उसने किसी एक शख्स को निकाला, माजी में अखराजा। उसका अगला फॉर्म कहता है युखरिजु, वो एक शख्स निकालेगा, और इखराजन कहते हैं निकालने को, ठीक है, बस समझ जाए थोड़ा सा समझ लें। अहली ही ये हमारे उर्दू में बोलते हैं अहलो याल, ठीक है, तो वही लफ्ज है अहल उसके, यानी उस घर के अहल जो वहां रहते हैं या उसकी निस्बत के अहल है। फिर आगे देखिए वल फितना, तो लफ्ज पीछे गुजर चुका, फितना फसाद पैदा करना, अल्लाह से रोकना लोगों को। फिर कत्ल, कत्ल का लफ्ज आ गया, फिर भी देखिए पीछे क्या गुजरा, किताल, अब क्या आ गया कत्ल, तो उसी की को बदली भी शक्ल है ना। वला यसालून, ये लफ्ज बिल्कुल नया आपके लिए, और ये कुरान पाक में एक से ज्यादा मुकाम पर इस्तेमाल होता है, इन्हीं में शुरू के ही पारों में आ जाता है। देखिए लफ्ज ला तो आप समझते हैं इसका मानी क्या होता है, नहीं, यजालून का लफ्ज कभी उर्दू में आपने सुना, रूट क्या होगा इसका, जा हमजा लाम, ठीक है। अब उर्दू में आपने लफ्ज कभी जवाल सुना, जवाल जायल होना, बुखार के असरात जायल हो गए, ठीक है, तो जाला यजालू जवालन, किसी चीज का दूर होना या कम होना। अब यहां मैंने आपको लफ्जी तर्जमे में भी इशारा किया था कि ला यज़ालून का एक लफ्जी माना बिल्कुल जो बनता है कि वो नहीं टलेंगे। अब ये नहीं टलेंगे को आसान और खूबसूरत उर्दू में हम कह देते हैं हमेशा रहेंगे, फर्क तो नहीं है ना दोनों में कोई, तो ये आप जैसे भी तर्जमा याद करना चाहे। सवाल पैदा होता है कि टेस्ट में आ गया तो क्या करेंगे, हा? तो ला यज़ालून आएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, नहीं यज़ालूना वो टलेंगे, ठीक है, वो बामुहावरा तर्जमे के हमेशा रहेंगे। फिर आगे देख लीजिए जी, हत्ता यरुद्दुकुम, रौ दाल दाल इसका रूट है, रद्द यरुद्दु से। फिर उसके बाद देखिए रद्दन लौटाना वापस करना, इनिस्तताउ रूट क्या होगा, तोए वाव ऐन, ठीक है, इनिस्तताउन इस्तताउ यस्ततीउ इस्तातुन, उर्दू में कहते हैं मुझे इस चीज की इस्तेतात नहीं है, ठीक है, वही लफ्ज है, ताकत नहीं है। इनका लफ्ज है, ये शर्त के लिए, इन शर्तिया है शुरू में, किसी काम को करने की इस्तेदात रखने को ये काम कहते हैं। फिर हमें यरतदित मिनकुम, यरतदित और ऊपर एक लफ्ज गुजरे जी,
यरुद्दू, शाबाश, दोनों एक ही घर के हैं, बस इसमें ते बीच में घुस गई है, ठीक है। यरतदिद, उर्दू में सुनते हैं मुरतद, ठीक है। अच्छा असल में इसमें लफ्ज क्या है? रद्द। अच्छा रद्द, रद्द कैसे? ये रद्दी की टोकरी क्या होती है? यही है, जो चीज गई फेंको, रद्दी, रद्दी। तो यरतद, जब बंदा मुरतद हो जाता है ना, यानी अल्लाह माफ करे दीन से, इस्लाम से, कुरान से दूर हुआ, तो वो रद्दी की टोकरी में गिरता है। आजमा के देख लें, जो अल्लाह के दीन से, अल्लाह के काम, अल्लाह के रास्ते से हटता है ना, वो दुनिया के भी काम का नहीं रहता, वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार होगा या परेशानी का। तो लफ्ज रद्द में यरतद और मुरतद, फिर उसी से लफ्ज है इरतद, यरतद, इरतादन, ठीक है। अपने दीन को छोड़ना, इस्लाम कबूल करके कुफर की तरफ पलटना, ठीक है। मिनकुम, तुम में से। फिर इसके बाद आप देखिए, अन दीन ही अपने दीन से फयमुत। अब ये फयमुत कभी पीछे पड़ा? मौत, यमीतुन, यमूतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा यमूतुकुम, वही लफ्ज है। तो यमुत वो मरता है, वहु और वो काफिर, उन काफिर है, पौलाई का यही लोग हैं। हबितत, हा बातोए खबता। अब लफ्ज देखिए, हबितत लफ्ज आपके सामने थोड़ा सा आज नया है, इसको मैं जरूर खोलना चाहूंगी। हा बातोए, उर्दू में बोलते हैं उसको तो खब सवार हो गया, वो कौन सा होता है? क्या वो और ये एक ही? देखिए जरा स्पेलिंग, खब्त और हब्त ही मैं देखना चाह रही थी, वो आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आयत रिबा में आएगा। अल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतान, वो खा है, यहाँ हा है। तो हा बात तो कहते हैं जानवर का इतना चारा खाना कि उसका पेट फट जाए। पेट में खाना गया, खाने से क्या मिलती थी? एनर्जी। एनर्जी इसको यूज करता तो काम करता, लेकिन उसने इतना लालच किया, खाता ही गया, खाता ही गया, खाता गया, तो गोया के खाने का जाया होना हुआ ना। तो यही लफ्ज होता है हाबीता, आखिर में जो तोए है ना, ये छोड़ दीजिए, हाबीता क्या है? उनके आमाल जाया हो गए, यानी किए तो थे लेकिन जाया हो गए दुनिया और आखिरत में भी, और यही लोग हैं आग के साथ ही। असहाब का लफ्ज उर्दू में कभी सुना? जी बिल्कुल, साहिब की जमा है असहाब, साथी, असहाबुल नार, असहाबे सुफा, अल्लाह के नबी के सहाबा का लकब है सहाबी, लेकिन वैसे कहीं भी रहने वाले। इस वक्त आप लोग भी असहाब हैं, आगे इंशाल्लाह सूरत निसा में हम पढ़ेंगे असहाब, साहिब बिल जंब, करवटों के साथी, शौहर बीवी को भी कहते हैं एक दूसरे का, तो जो किसी के साथ बैठ गया वो साथी है। अब यहाँ लफ्ज है असहाबुल नार, लफ्जी माना अगर आप देखें ना, तो इसका मानिए कि आग के साथ रहने वाले, लेकिन मतलब ये कि आग में जाने वाले, और मुफरद इसका साहिब हो गया। हम वो फी हा, इसमें खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। ये बताइए कि लफ्ज खालिदून आ जाए अगर आपको लफ्जी तर्जमे में खाली, तो क्या तर्जमा करेंगे? हमेशा रहेंगे। हाँ, आपके इस बारे में कल इस टेस्ट को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह इरो, ठीक है। लेकिन ये इस बारे में आपने से बहुत सारों की गलती थी, नंबर नहीं कटा, लेकिन कट सकता है। खालिद का लफ्ज आया था ना, खालिदुन, तो खालिद हमेशा रहने वाला। आप में से अक्सरियत ने खालिद लिखा है, यानी हमेशा लिखा है, ठीक है। कुछ लोग क्या लिखते हैं, जो मुझे नहीं थी एक गलती, अक्सर लोग खालिदून के जवाब में क्या लिखते हैं, वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारे बा मुहावरा तर्जमों में भी यही लिखा होता है। लेकिन लफ्ज खालिद कौन होता है? मर्द का नाम है ना, एक खालिद हमेशा रहने वाला, तो खालिदून सब रहने वाले। तो बहरहाल ये है कि ये छोटी छोटी चीजें तजुर्बे से आती हैं, और गलतियां करें और नंबर काटें तो फिर तो कभी नहीं भूलती, ठीक है। चले, खालद यखलुद खुलूद से खालिद फाइल का वजन है। फिर इसके बाद आप देखिए अगला लफ्ज देख लीजिए, इसमें इन्नल्लज़ीना आमनू, इसमें कोई भी लफ्ज मुश्किल नया नहीं है, पहले गुजर चुके बहुत दफा। अगली आयत पे चलिए जी, हाजरू भी हो गया, जाहदू भी हो गया, उलाई का यरजूना लफ्ज, इसमें यरजून पहले हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो देख ले, रजा, यरजू, रजान, उम्मीद रखना। उर्दू में कभी सुना है आपने लफ्ज रजा? उसमें ऐन आता है, रुजत कह रहे हैं आप लोग? नहीं, रजा उम्मीद को कहते हैं। बैनल अल ईमान बैनल खौफ व रजा, ईमान और खौफ के ना, उम्मीद, ईमान क्या है? उम्मीद और खौफ के बीच की चीज है। इसी तरह हम सूरत उसमें भी पढ़ते हैं, सजदा में भी रात को पढ़ते हैं, तो रजा उम्मीद को कहते हैं। एक पोइम भी है जिसमें मुझे काफी शक है लफ्जों में, आजकल बड़ी चल रही है जुनेद जमसे की, रिजाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि रिजा यानी मेरी सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो कुछ बोल उसमें है, इसलिए कभी हम वो अपने रूम्स में नहीं चलाते। बहरहाल ये कि रजा वो उम्मीद रखना और जिससे उम्मीद रखी जाए। रहमत अल्लाह ही अल्लाह का रहम हो गया, वल्लाहु गफूर रहीम ये आपको आता है। या सलूना का निल खम जी, ये है दो नए लफ्ज जो आपने आज समझने हैं। खमर का लफ्ज देखिए, ख मीम रा, खमरा का असली माना होता है किसी चीज को ढांप देना, टू कवर। अरबी जुबान में खिमार ओढ़नी को कहते हैं, समझते हैं। युद्रिबन बिहुमुरिहिन अला जुयूबिहिन, सूरह अल अहज़ाब में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो चीज जो जिस्म को ढांप ले उसको खिमार कहते हैं। अब अक्ल को खमर, सॉरी शराब को खमर क्यों कहते हैं? क्योंकि अल खमरु मा खामर अल अक्लु, ठीक है, अकल को ढांपने वाली है। हर वो मशरूब जो अकल और फिक्र को मुअत्तल कर दे, इस पे पर्दा डाल दे, उसको खमर कहते हैं। कई लोग कहते हैं पागल जी किधर कुरान में दुपट्टे का जिक्र है, तो खमर कहते ही ओढ़नी का जो सर के साथ साथ सीने पे भी डाल दी जाए। मैसर का लफ्ज भी नया है, या सीन रो। युसर कहते हैं आसानी को, कुरान पाक में आता है नमाल उसरी युसरा, दो दफा कहा अल्लाह ने कि फिक्र ना करो, तंगी और आसानी साथ साथ चलती है। तो युसर से हो गई आसानी, तो मैसर कहते हैं कुल्लु शयिन फीही कुमारुन फहुवा मैसर। ये तो इसकी इस्तलाही तफसीर है, लेकिन आसानी से मिलने वाला माल, और इंग्लिश में इसको बड़े प्यार से लोग गैम्बलिंग कहते हैं, बड़ा प्यारा लगता है गैम्बलिंग। या इसी तरह उसके लिए नाम भी बड़े खूबसूरत रखे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे तफसीर में। तो आसानी से मिलने वाला माल यूसर है। फी हिमा इस्मन कबीर पीछे गुजर चुका। मनाफियों के लफ्ज में नफा छुपा हुआ है, नून फा आइन इसका रूट है। यह सलूना का माज अयुन्फिकून, बिल्कुल यही आयत गुजर गई। अल अफ को समझ लीजिए, यहाँ आज ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में आगे जाके और तरह का आइन फा वो इसका रूट होता है, ठीक है। अल अफ मा यस्खलु इन्फाकुहु, ये इसकी डिक्शनरी तारीफ है कि अफ क्या है, जिसका खर्च करना आसान हो, ऐसा माल जिसका खर्च करना इंसान के लिए आसान हो और इंसान इसके बाद भी तंगदस्त ना हो। लेकिन अगर लफ्जी माना अफ का देखे ना, तो ये देखे मेरे हाथ से जाने दो, जाने दो। हदीस में मर्दों के लिए दाढ़ी के लिए लफ्ज क्या आता है, दाढ़ी को छोड़ दो, उसके लिए लफ्ज अलफ आते हैं। मतलब ये कि दाढ़ी को, यानी कि दाढ़ी रखना छोड़ दो, मतलब ये कि दाढ़ी को टच ना करो, इसको रोज सुबह उठ के छेड़ा ना करो, उस तरह से कैंची से उस तरह से उसको उसके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। तो वो उस लफ्ज से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। ज्यादा जरूरत माल को भी अफ कहते हैं। दरगुजर क्या मानी है, युबैजिनु बायानून है, ततफक्करून फकर आफ, फकर फिकर तफक्कुर उसमें जरा शिद्दत आ गई। आगे लफ्ज देख लीजिए, तो खाले तो हम 220 आयत में नया लफ्ज आपको मिलेगा, खलाम तो खलता। उर्दू में कभी आपने सुना लफ्ज खलत मलत हो गई, सुनी भी बात जी, इख्तलात, औरत और मर्द का इख्तलात, किसको कहते हैं इख्तलात, मिक्सिंग, ठीक है। और मिक्सिंग किसी का एक दूसरे के साथ जुड़ना किसी भी एंगल से, तो गोया के यहाँ तो खाले तो हम में क्या है, मिला लो, यानी यतीमों के माल को अपने माल में मिला के अच्छे तरीके से खा सकते, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चीजों को बाहम मिलाने को खलता कहते हैं। इसी तरह फिर दोस्त, पड़ोसी और कारोबार में शरीक शख्स, यानी पार्टनर्स को अरबी में खलीत कहते हैं, ख लाम या तो, ठीक है। तो यानी पार्टनरशिप कह लीजिए या पार्टनर्स, इसमें क्या लफ्ज आ गया, मुखालतत से मुराद शराकत है। सिर्फ ये लफ्ज खोल रही हूँ, वरना बात बहुत आसान है। आगे चलिए, मुफसिदू भी आ गया। हाँ, एक नया लफ्ज है, इसको गौर से समझ लें, वलौशा अल्लाहु लअनतकुम। अब देखिए इस लफ्ज को शुरू शुरू में बिल्कुल नहीं समझ आती, मुझे भी नहीं आई थी, लेकिन जब दो तीन दफा पढ़ा, फिर इसको कुरान की दूसरी जगहों से रिलेट किया, तो उसके बाद ये चीज हमें समझ आती है। तो लाइन नून ता, हम इंशाल्लाह आगे सूरह आले इमरान में भी पढ़ेंगे नॉन मुस्लिम के रेफरेंस में अहले किताब के, कि मुसलमानों को जो चीज बुरी तकलीफ देती है वो उनको अच्छी लगती है, और मा अनित तुम, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हो तो उनको खुशी होती है। तो यहाँ लफ्ज है अनत यो नितु एनातन, इसका मतलब होता है ऐसी मुशक्कत में डालना, جس میں ضائع اور برباد ہونے کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے, ایسی مشقت جس میں ضائع اور برباد ہونے کا خطرہ ہو, اور تکلیف جس میں خوف اور ہلاکت ہو. ٹھیک ہے, تکلیف کے معاملوں میں. پھر آگے دیکھ لیتے ہیں جی اگلی آیت. جی ولا تن کی ہو, یہ تھوڑا سا آپ ٹرکی سا لفظ ہے, اگر سمجھنا چاہتے ہیں یہاں سمجھ لیں, مشکل تو نہیں لگ رہا, ورنہ پھر جب تفسیر ہوگی ویسی اینڈ پہ ہوگی تو پھر تیز ہی جانا پڑتا ہے, سمجھ لیں. دیکھیں یہاں لفظ ایک ہے تن کی ہو, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. اسی آیت کے اندر ایک اور لفظ بھی ہے جو دوسرا ہے, وہ کیا ہے, لا تن کے ہو. ٹھیک ہے, لا تن کے ہو, لا تن کے ہو میں دیکھیے ذرا عام طور پہ کیا مانی ہے, ایک جگہ تا پہ زبر ہے, دوسری جگہ تا پہ پیش ہے, دونوں کا روٹ کیا ہے, نون کافا نکاح. ٹھیک ہے, نکاح سے ہے لفظ نکاحن, نکاح ین کے ہو نکاحن, نکاح کرنا یعنی دو لوگوں کا آپس میں جڑنا, جوڑنا ان کو. لیکن یہاں لفظ کیا ہے, ان کے ہو تن کے ہو, کون سا ہے, جس کو اردو میں آپ انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو وائس, اور تن کے ہو دیکھیں گے تو یہ پیسیو وائس ہے. تو جب کبھی لفظ ان کہا ہے تو اپنا نکاح کرنا, مردوں کو یہاں کیا کہا گیا, تم اپنا نکاح نہ کرنا, کیونکہ مرد اپنا نکاح کروا سکتا ہے یعنی اپنی مرضی سے. لیکن جہاں عورت کے نکاح کی بات ہے تو کہا لا تن کے ہو, تم نہ نکاح کرنا, یعنی صرف اس ایک لفظ نے بتا دیا کہ اسلامک ٹرمنالوجی میں, اسلامک شریعت میں عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو بات واضح ہے, نتا پہ زبر ہے تو اپنا نکاح کرنا کرانا, اور تا پہ پیش ہے تو دوسرے کا نکاح کرانا, یعنی کسی باپ یا بھائی کا اپنی بیٹی یا بہن کو دوسرے مرد کے ہاتھ میں دینا, کسی حق مہر اور باقی شرائط کے ساتھ. پھر دیکھیں والا عبدو عین بادال, مومن ایمان والا غلام. پھر آپ ایک لفظ اس میں دو دفعہ دیکھ رہی ہیں, آجبکم, اور پیچھے آپ نے پڑھا آجبتکم, لفظ دونوں ایک ہی ہے, عین جیم با اس کا روٹ ہے, آجب تا اس میں مونس کے لیے آ گئی, تو مراجے کے خوبصورت لگے, یو لائک دیم, وہ تمہیں اچھے بھی لگے پھر بھی تم ان کی بات نہ مانو. ید اون دال عین نون, اس دا سوری دال عین وا اس کا روٹ ہوگا, وہی لفظ ہے جو دعوت ہے, دا ید او دعوتن, کسی کو دعوت دینا. ٹھیک ہے, الن ناری, الا جو ہے یہ حرف چر ہے جس کے بعد آگے زیر آ رہی ہے, مطلب کیا ہے یہاں اس دعوت سے, کہ ال الاعمال الموجبت للنار, یہ تمہیں ان اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں جو تمہیں آگ میں لے جائیں گے. اور آگے میرا حال ہے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے, الحمدللہ. یہاں پہ آیتیں پوری ہوئی, تلاوت سنتے ہیں. جی ارم آپ ادھر ہے,
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير, وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله, والفتنة أكبر من القتل, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله, والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر, قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفع بما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون